आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रुमीजा रब है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा सातवीं की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 10। बच्चों, प्रीवियस ऑडियो में हम इस पाठ को आधा पढ़ चुके हैं। इस ऑडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 79 निकाल लीजिए। ओके बच्चों, आप सब ने निकाल लिया, चलिए शुरू करते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 79, पैराग्राफ नंबर 1। पर वे रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अगड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वे बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूं। उस समय दिशका पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वे जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वे खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वे पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप में बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद आमने सामने पेड़ की दिशका पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जब तोतो चांद जो थी वो क्या हो गई, परेशान हो गई। और बच्चों, परेशान क्यों हो गई थी ये तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि तोतो चांद और यासुकी चांद की इतनी मेहनत करने के बाद भी यासुकी चांद को वो पेड़ पर नहीं बिठा पाए, वो सीढ़ी पर ही बैठ गए। तो बच्चों, ये सारी परेशानी होने के बावजूद भी तोतो चांद रोई नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर तोतो चांद वो खुद रोना शुरू कर देंगी तो यासुकी चांद भी हार मान जाएंगे और वो भी तोतो चांद को देखकर रोने लगेंगे। जो ये सारी चीजें तोतो चांद नहीं चाहती थी कि यासुकी चांद रोए। फिर बच्चों, यासुकी चांद का हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें उम्मीद की किरण दिखाने के लिए, उम्मीद का एक नई सुबह दिखाने के लिए तोतो चांद ने यासुकी चांद का वो हाथ पकड़ा और अपने हाथ में रख लिया जिस पे पोलियो का असर था। तोतो चांद बच्चों अपन को ये भी बताती हैं कि उनका वो हाथ तोतो चांद के हाथ से बड़ा था और साथ ही साथ उनकी जो उंगलियां थी वो भी तोतो चांद की उंगलियों से बड़ी थी। फिर बच्चों, हाथ पकड़कर तोतो चांद यासुकी चांद से बोलती हैं कि तुम लेट जाओ, मैं धीरे धीरे तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं तुम्हें इस सीढ़ी से अपने पेड़ पर बिठा सकूं। लेकिन बच्चों, अगर ये सारी चीजें कोई और देखता कि कैसे नन्नी सी तोतो चान यासुकी चान को खींच रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही जोखिम उठाने वाला काम या बहुत ही बुरा काम लगता और वो लोग चीख मार देते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यासुकी चान और तोतो चान को दोनों को ही एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, क्योंकि यासुकी चान के लिए क्या हो रहा था बच्चों, एक अच्छा ही काम हो रहा था, क्योंकि खुद तोतो चान सारी मुश्किलों से, सारी परेशानियों से लड़ रही थी ताकि वो यासुकी चान को क्या कर दें, पेड़ पर चढ़ा दें। फिर बच्चों बादल का एक जो टुकड़ा था वो क्या हुआ, बीच में आया और उन्होंने क्या किया, उस बादल के टुकड़े ने, उस बादल के नन्हे से टुकड़े ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। वो काम ये था कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों को ही उन्होंने इस कड़कती धूप से बचा लिया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद जो क्या हुआ, हाँ तोतो चान सफल हो गई और उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने किसको बच्चों, यासुकी चान को खींचकर अपने पेड़ पर बिठा लिया। तोतो चान बहुत ज्यादा क्या थी, घबरा चुकी थी, पसीने से तरबतर थी और फिर उन्होंने सम्मान में झुककर बोला कि मेरे पेड़ पर स्वागत हो तुम्हारा, मेरे पेड़ पर आने के लिए शुक्रिया। कौन बच्चों, हाँ वो किससे बोल रही है, वो यासुकी चान से बोल रही है। बच्चों कौन बोल रहा है, तोतो चान बोल रही है। तो आप सबको ये समझ में आया, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 80 निकाल लीजिए। तो बच्चों आप सबने निकाल लिया, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको समझने में और पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वे मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है, पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। तो बच्चों इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कैसे यासुकी चान को जब तोतो चान ने पेड़ पे चढ़ा लिया तो उसके बाद यासुकी चान जो थे वो एक डाल के सहारे खड़े रहे। बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कहानी के स्टार्टिंग पे, पार्ट के स्टार्टिंग में, कि यहाँ पर क्या होता था, इस जगह पे जहाँ पे ये दोनों रहते थे वहां पर हर एक इंसान को, हर एक बच्चे के लिए एक पेड़ उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के पेड़ पे ऐसे ही नहीं चला जाता था बिना उसके परमिशन के। जब किसी को जाना होता था तो वो परमिशन लेता था। तो वही बात यहाँ पर साबित हो रही है, जब यासुकी चान फाइनली तोतो चान के पेड़ पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों वो उनसे पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और बच्चों फिर तोतो चान उसको परमिशन दे देती हैं कि हाँ आप बिल्कुल आ सकते हैं। और बच्चों जब वहां पे जो यासुकी चान थे वो पहुंच जाते हैं और सारी चीजों को देखते हैं, आसपास की दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अच्छा दुनिया को ऐसे भी देखा जा सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और यासुकी चान खुशी खुशी हंसते हुए ये भी बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना, इतना अच्छा होता है, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मदद से मैं पहली बार यहाँ आ पाया हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 80, पैराग्राफ नंबर 3। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमरीका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन, यासुकी चान उमंग से बता रहा था। वह कहती है कि जब वे जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको बहुत सी अच्छी चीजें पता चलेंगी। ये भी पता चलेगा कि ये कहानी जो है वो कहाँ की है, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये किस जगह की है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जब यासुकी चान और तोतो चान दोनों फाइनली पेड़ पर पहुंच जाते हैं, तो दोनों वहां पर बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तभी बच्चों क्या होता है, जो यासुकी चान होते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, कि जो यासुकी चान की बहन है वो अमरीका में है। किससे बोल रहे हैं बच्चों? तोतो चान से बोल रहे हैं। और बच्चों, यासुकी चान बोलते हैं कि मेरी बहन बता रही थी कि वहां पे एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसको अपन टेलीविजन या टीवी बोलते हैं। और बच्चों, यासुकी चान बहुत ज्यादा खुश होकर ये सारी चीजें तोतो चान को बता रहा था, और वो ये भी बोलता है कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं तोतो चान, जब ये सारी चीजें, मतलब टेलीविजन टीवी, हमारे जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे सारी चीजों को देख सकेंगे, खेल भी, कार्टून भी, कुश्ती भी, सुमो भी, सारी चीजें। और ये जो टेलीविजन होता है वो कैसा होता है, ये सारी चीजें बताते हुए जो यासुकी चान जो है तोतो चान से बोलते हैं कि वो एक डिब्बे की तरह होता है, मतलब टेलीविजन जो है, टीवी जो है, वो एक डिब्बे के प्रकार की होती है, और जब हमारे वहां आ जाएगी तो हम खुश होंगे। तो बच्चों, इससे आपको ये पता चल रहा है कि पहली चीज, यहाँ पे टीवी की बात हो रही है, दूसरी चीज, ये कहानी जो ली गई है, लिखी गई है, ये जापान की है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आपकी पुस्तक का पेज नंबर 80। चलिए बच्चों, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं आपकी पुस्तक का पेज नंबर 80। तोतो चान उस समय ये तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेना का क्या अर्थ होगा। वह तो ये भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो तोतो चान थी वो उस समय यासुकी चान की बात समझ नहीं पाई, और वो ये सोचती ही रही कि उस लड़के के लिए, उस इंसान के लिए जो थोड़ी देर चल भी नहीं पाता, घर बैठे सारी चीजों को देखना कैसा रहेगा और इससे इसका क्या मतलब होगा। और बच्चों, तोतो चान तो ये भी सोचती रहती है कि कैसे अपन पहलवानी और सुमो वाले खेल, गेम, इतने से डब्बे में देख सकेंगे। सुमो और पहलवान के खेल में जो पहलवान होते हैं वो तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, वो कैसे एक छोटे से डब्बे में समा सकते हैं। ऐसे सवाल करके खुद तोतो चान अपने आप को कंफ्यूज कर रही थी बच्चों, और इससे पहले किसी ने उसे इन सारी चीजों के बारे में बताया भी नहीं था। और बच्चों, दूसरी ओर ये भी कि जो तोतो चान थी वो क्या करती है, तोतो चान को पहली बार यासुकी चान ने ही बताया था, और वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या है। और बच्चों, फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा खुश थे और गीत गा रहे थे, गाने गा रहे थे, और ये जो मौका था, ये जो एक तरीके से क्रेडिट था ऊपर चढ़ने का, यासुकी चान के लिए जो चांस थी वो पहली और आखिरी थी, क्योंकि यासुकी चान को लग रहा था तोतो चान जैसा कोई इंसान या कोई लड़की या कोई लड़का भी नहीं है जो उनकी इतनी मदद करेगा और उन्हें ऊपर बिठाएगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे टीवी के बारे में बताते हुए और सोचते हुए तोतो चान ये सोचती है कि ऐसा डिब्बा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये कहानी उस दौर में उस समय में लिखी गई है जब टीवी का नामो निशान नहीं हुआ करता था, मतलब टीवी का इन्वेंशन उसकी खोज नहीं हुई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों पाठ के बारे में पढ़ने से पहले अपन लेखक को देख लेते हैं। तेसुको कुरियानागी इसके लेखक हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों अनुवाद पूर्वा याशिक कुशवाहा। इसके जो असली लेखक हैं वो तेसुको कुरियानागी हैं। ये जापानी में लिखी गई होगी, फिर उसको जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में जिसका अनुवाद किया, हिंदी में जिसको ट्रांसलेट करके लिखी, वो लेखक हैं याशिक कुशवाहा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब अपन पाठ के बारे में पढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 80। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। तो मूलत जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने, इन अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोब याशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का ये अंश अपूर्व अनुभव। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो तोतो चान है वो खुद एक ऑथर है और वो अपनी रियल लाइफ के बारे में लिखती है। कैसे कि ये जो अपूर्व अनुभव है वहां पे वो अपने बचपन के उन दिनों को बता रही है, दर्शा रही है जब उनकी एक पोलियोग्रस्त, पोलियो से पीड़ित इंसान से मुलाकात हुई और फिर उनने सहायता करी। और बच्चों तोतो चान एक बहुत ही फेमस क्या है, निधि है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सी अलग अलग भाषाओं में, बहुत सी अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा चुका है और पढ़ाया जा रहा है। बच्चों ये जो तोतो चान है ये बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंस क्या है, एक बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जहां पे सब कुछ अलग हुआ करता था। जैसे कि रेल के डिब्बे जो होते हैं, ट्रेन के जो कोचेस होते हैं वो उनकी कक्षाएं, क्लासेस हुआ करती थी और उसके साथ साथ जो शाखा होती थी वो बच्चों की खेलने की जगह हुआ करती थी। तो बच्चों ये सारी चीजें ही यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 81 और अपन प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से का प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, सोचिए। इसका उत्तर ये होगा क्योंकि पहली बार वो, पहली चीज उनकी दोस्ती होगी, दूसरी चीज और क्या हो सकती है, ये कि एक अलग तरीके का अनुभव देना चाहती थी वो उन्हें। क्योंकि बच्चों जब अपन किसी को परेशानी में देखते हैं और उसको खुश करना चाहते हैं तो अपन हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे उसे खुशी मिले। ऐसे ही तोतो चान जो यासुकी चान थे उनको खुश देखना चाहती थी, उन्हें संसार का सैर कराना चाहती थी, उन्हें पेड़ पर चढ़ाकर अलग अलग चीजों के बारे में दिखाना चाहती थी कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुशील है। यही सारी चीजों को दिखाने के लिए और अपनी दोस्ती निभाने के लिए और एक अच्छे इंसान होने के नाते वास्ते उन्हें ये काम किया और ये स्टेप लिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 81 प्रश्न अभ्यास पाठ से का प्रश्न नंबर 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? हाँ बच्चों, इसका उत्तर ये होगा कि दोनों के ही अनुभव, दोनों के ही एक्सपीरियंस अलग थे। और वो एक्सपीरियंस अलग क्यों थे? क्योंकि बच्चों एक तरफ तोतो चान थी जिसका खुद का ही वो पेड़ था और वो रोज वहां चढ़ जाती थी स्कूल से आने के बाद, और आसपास के लोगों को देखती थी, सड़क पे आते जाते लोगों को देखती थी, अपने मन को बहलाती थी। वहीं दूर दूर की चीजें जो उसे बहुत छोटी नजर आती थी उन्हें देखकर अपने मन को बहलाती थी। उसके लिए तो आम सी बात थी क्योंकि वो रोज ही वहां जाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर बच्चों जो यासुकी चांद थे उनके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार वो उस पेड़ पर चढ़े थे। इसलिए बच्चों उनके लिए सब कुछ नया नया था, उनके लिए सारा अनुभव अलग था। जैसे कि एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप पहले बार किसी जगह घूमने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और आपके जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो एक अलग ही प्रकार का होता है और एक अलग ही तरीके का होता है। लेकिन अगर आप रोज रोज वहीं जाने लगे तो आप चीजों को भूलने लगेंगे और अच्छे से उसी अच्छी चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे जो आप देख के आ रहे हैं। इसी तरह यासुकी चान के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा अलग था। उसके लिए वो एक तरीके से हेवन, जन्नत के, पैराडाइज के समान था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी इतनी मदद करी और इतने सारी चीजों के बाद वो ऊपर चढ़ा था और अब वो फाइनली चीजों को देख सकता था और एक्सपीरियंस कर सकता था कि कैसे बच्चे रोज रोज पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें आप इसके उत्तर पे लिखेंगे। आप सबको समझ में आ गया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 81 प्रश्न नंबर 3 प्रश्न अभ्यास पाठ से का, चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों पहले जब जो तोतो चांद थी, जब वो पहले वो लकड़ी वाली लैडर लेके आई थी, लकड़ी वाली सीढ़ी लेके आई थी और उस पे वो कामयाब नहीं हो पाई थी, तो दोबारा वो चौकीदार के छप्पर के वहां से एक 3D मतलब तीन पैरों वाली लेके आई थी सीढ़ी। तो जब वो उस पे चढ़ रही थी, चढ़ने की कोशिश करवा रही थी यासुकी चांद से, तो बच्चों उस समय जो सूरज था, जो सन था, उसकी जो धूप थी, रोशनी थी, वो बहुत ज्यादा तपती थी। तपती मतलब बहुत ज्यादा गर्म थी, क्योंकि इतनी घबरा गए थे वो लोग, इतना परेशान थे, इतना पसीना आ रहा था उन्हें कि तोतो चान को कौन देख रहा था? तोतो चान को यासुकी चान ने देखा और यासुकी चान ने जैसे ही तोतो चान को देखा तो उनके अंदर एक तरीके से साहस आया, मोटिवेशन आया कि जब कोई मेरे लिए इतना कर रहा है तो क्यों मैं नहीं आगे आके एक इनिशिएटिव लूं और आगे आऊं। इसी तरीके से ये सारी बातें सोचकर इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी यासुकी चांद ने सीढ़ी पर पैर रख दिया। वहीं दूसरी ओर बच्चों जब फाइनली यासुकी चांद सीढ़ी पर चढ़ के बैठ गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने के बाद, बहुत ज्यादा योजना बनाने के बाद भी तोतो चांद उन्हें पेड़ तक नहीं ला पाई थी और उन्होंने क्या किया, तोतो चान ने यासुकी चान का हाथ पकड़ा और उन्हें अच्छे से समझाते हुए बोला कि आप आराम से लेट जाओ, मैं आपको खींचती हूँ। तो बच्चों वही समय था जब एक बादल का टुकड़ा आकर उनके सामने अड़ गया था और उन्हें धूप आना बंद हो गई थी। तो आप ये दो इंसिडेंट अच्छे से याद रखिएगा कि कब धूप आ रही थी और कब नहीं आ रही थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आपकी पुस्तक का पेज नंबर 81 प्रश्न नंबर 4 प्रश्न अभ्यास फारसे का। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो बच्चों लेखिका ने पहली बात ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि हमेशा अपन को जिंदगी में वैसे लोग नहीं मिलते हैं जैसे अपन चाहते हैं, अपन को वो लोग नहीं मिलते हैं जैसे अपन चाहते हैं। बच्चों आपने भी अपने कक्षा में देखा होगा बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, या आपने अपनी जिंदगी में आम लोगों में भी देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान को प्रॉब्लम में डाल के हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बच्चों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो किसी से एक बार मदद ले लेते हैं तो दोबारा लेने की क्या नहीं करते, आस नहीं करते, दोबारा लेना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ सोचकर लेखिका ने लिखा होगा। और बच्चों इस वाक्य में ये बताया जा रहा है कि यासुकी चान के लिए वो शायद पहला और अंतिम मौका इसलिए होगा क्योंकि बच्चों शायद ही उन्हें अब कोई और तोतो चान जैसी लड़की मिले जो इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद उन्हें ऊपर चढ़ा सके। दूसरी चीज बच्चों ये भी हो सकती है, शायद यासुकी चान अब खुद इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद जो ऊपर चढ़े थे वो हार गए हो, उनने हार मान ली हो, उनके हाथ पैरों ने हार मान ली हो। क्योंकि बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यासुकी चान जो थे वो पोलियो के मरीज थे। बच्चों पोलियो में क्या होता है, आपकी एक पार्टिकुलर बॉडी का पार्ट, शरीर का एक हिस्सा काम करना बिल्कुल से बंद कर देता है और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो बच्चों अपन तो तोतो चान के बारे में सोच रहे हैं, आप यासुकी चान के बारे में सोच के देखिए, अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता कि आपका एक हाथ या पैर काम नहीं कर रहा होता और आप इतनी मेहनत करके, इतनी सारी काम करके ऊपर चढ़ते, तो क्या आप दोबारा बोलते या दोबारा सोच सकते थे कि आप ऊपर आए। बच्चों वहां पे जाके जो खुशी मिलती है वो तो एक तरफ होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम सुने हुई कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, कितने बार तो उन्होंने अपने आप से हार मान ली, वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं पाठ के माध्यम से और लेखिका के माध्यम से कि हाँ ये सही बात है कि ये उनके लिए अंतिम भी हो सकता है मौका, क्योंकि शायद वो भी हार मान चुके हो, उनको ऐसी दोस्त भी नहीं मिले। और ऊपर से लेखिका ये सारी चीजें इसलिए बता रही हैं क्योंकि बच्चों जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, लेखिका दर्शाना चाह रही है। और बच्चों इस पाठ का ही नाम अपूर्व अनुभव है, मतलब एक ऐसा अनुभव जिनको शब्दों में लिखा जा न सके। तो ऐसा ही कुछ अनुभव तोतो चान और यासुकी चान के साथ हुआ कि तोतो चान जो आम सी लड़की थी उनने इतना बड़ा प्रयत्न ले लिया, इतना बड़ा स्टेप ले ली कि आज वो किसी भी तरीके से क्या करेंगी, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाएंगी। और बच्चों माता पिता से भी नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पता था वो जरूर मना करेंगे। और बच्चों जब कोई भी इंसान अच्छे काम करने के लिए आगे आता है, अच्छी स्टेप लेता है, तो उसे मना करने वाले एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आते हैं। ऐसे ही कुछ यही बात सोचकर तोतो चान ने और यासुकी चान ने अपने माता पिता से नहीं बताया होगा। तो बच्चों ये जो आपका पाठ है ये यही समाप्त होता है। अब अपन मिलेंगे अगली ऑडियो में, तब तक के लिए बाय। नमस्कार, शुक्रिया सुनने के लिए।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।